नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Not 3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा जो टाइडी की पुस्तक कंट्रोल प्लस ऑल प्लस के ऑस इंटरनेट पर सक्रिय किशोर हैकिंग गिरोहों की पड़ताल करने वाली सच्ची अपराध और साइबर सुरक्षा संबंधी गैर कथा पुस्तक है। टाइडी जो BBC के साइबर संवाददाता है, इस विषय को केवल तकनीकी उल्लंघनों की सूची की तरह नहीं देखते। उनका मुख्य सवाल यह है कि कुछ किशोर ऑनलाइन समुदायों में कौशल, पहचान और साथ पाने की तलाश से आगे बढ़कर संगठित डिजिटल अपराध और जानबूझकर क्रूरता तक कैसे पहुंचते हैं। पुस्तक का केंद्रीय प्रसंग फिनलैंड के जूलियस किविमाकी, जिसे GQ के नाम से जाना गया और वास्तव में मनोचिकित्सा सेवा पर हमले के इर्द गिर्द है। साथ ही लल्जसेक, लिजर्ड स्क्वाड और अन्य समूहों के जरिए हैकिंग संस्कृति के बदलते रूप को रखा गया है। पत्रकारिता, हैकरों तथा पुलिस अधिकारियों के साक्षात्कार और पीड़ितों पर पड़े असर के माध्यम से पुस्तक बताती है कि डिजिटल हमले आर्थिक नुकसान से कहीं अधिक निजी, सामाजिक और मानसिक क्षति पहुंचा सकते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, शरारत से संगठित डिजिटल अपराध तक का बदलाव। पुस्तक का प्रमुख तर्क यह है कि किशोर हैकिंग को केवल तकनीक जानने वाले बच्चों की शरारत मानना अब खतरनाक रूप से अधूरा है। आरंभिक स्तर पर गेमिंग सेवाओं को बाधित करना, वेबसाइट को ठप करना या ऑनलाइन पहचान बनाना भागीदारी का प्रवेश द्वार हो सकता है, लेकिन समूह के भीतर मिलने वाली प्रशंसा, प्रतिस्पर्धा और बदनामी धीरे धीरे अधिक गंभीर कृत्यों को सामान्य बना सकती है। टाइडी इस बदलाव को उन गिरोहों के संदर्भ में देखते हैं जिन्होंने बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्मों और संस्थाओं को निशाना बनाया। पुस्तक का बिंदु यह नहीं कि हर तकनीकी रूप से जिज्ञासु किशोर अपराधी बनता है, बल्कि यह है कि कुछ ऑनलाइन परिवेश जोखिम भरे व्यवहार को पुरस्कार की तरह पेश करते हैं। वहां किसी हमले की नैतिकता से अधिक उसकी चर्चा, दृश्यता और साथियों पर प्रभाव मायने रखने लगता है, इसलिए साधारण दंडात्मक भाषा भी पर्याप्त नहीं पड़ती। समस्या में सामाजिक अलगाव, डिजिटल प्रतिष्ठा की चाह, कमजोर निगरानी और ऐसे नेटवर्क शामिल है जो कौशल को नुकसान पहुंचाने की क्षमता में बदल देते हैं। पुस्तक साइबर अपराध को एक अकेले प्रतिभाशाली व्यक्ति की कहानी के बजाय सहयोगी, प्रतिस्पर्धी और सीमा पर उपसंस्कृति के रूप में समझने का आग्रह करती है। दूसरा, जूलियस किविमाकी और वास्तव में हमला, गोपनीयता पर प्रत्यक्ष आघात। जूलियस किविमाकी की यात्रा पुस्तक को एक ठोस मानवीय केंद्र देती है। टाइडी उसके किशोर अवस्था के उपद्रवी हैकिंग से गंभीर अपराधों तक पहुंचने को इस व्यापक प्रश्न से जोड़ते हैं कि ऑनलाइन दुनिया किस तरह किसी व्यक्ति के व्यवहार को कठोर बना सकती है। इस कथा का सबसे गंभीर हिस्सा फिनलैंड की वास्तव में मनोचिकित्सा श्रृंखला पर हमला है। यहाँ चोरी हुआ डेटा केवल नाम, पते या सामान्य पहचान संबंधी जानकारी नहीं था, बल्कि मरीजों के उपचार नोट्स भी थे। संस्था से वसूली की कोशिश के बाद मरीजों को सीधे धमकाना इस घटना को सामान्य डेटा चोरी से अलग बनाता है। पुस्तक इस प्रसंग के जरिए स्पष्ट करती है कि संवेदनशील स्वास्थ्य सूचना का दुरुपयोग व्यक्ति की गरिमा, सुरक्षा और मानसिक स्थिरता पर सीधा हमला है। पीड़ितों के लिए जोखिम केवल वित्तीय धोखाधड़ी नहीं, बल्कि निजी अनुभवों के सार्वजनिक होने का भय और दीर्घकालिक मानसिक आघात है। किविमाकी का मामला इस बात का उदाहरण है कि साइबर सुरक्षा की विफलता को अमूर्त तकनीकी समस्या कहना पर्याप्त नहीं। जब संस्थाएं अत्यंत निजी डेटा रखती है, तब उनकी सुरक्षा व्यवस्था का संबंध सीधे नागरिकों की भलाई और भरोसे से होता है। तीसरा, अराजकता। ध्यान और साथियों की मान्यता, किशोर गिरोहों की प्रेरणा। टाइडी पारंपरिक साइबर अपराधियों और कुछ किशोर हैकिंग गिरोहों के बीच एक उपयोगी अंतर रखते हैं। अनेक पेशेवर आपराधिक नेटवर्क मुख्यतः धन कमाने, फिरौती लेने या डेटा बेचने के लिए काम करते हैं। इसके विपरीत पुस्तक में वर्णित कुछ युवा समूहों के लिए अराजकता पैदा करना, सार्वजनिक ध्यान पाना और साथियों के बीच प्रतिष्ठा अर्जित करना भी प्रमुख प्रेरक है। इसका अर्थ यह नहीं कि आर्थिक लाभ अनुपस्थित है, बल्कि यह कि प्रसिद्धि और शक्ति का प्रदर्शन कई बार लक्ष्य को अधिक क्रूर और लगातार बनाता है। गेमिंग प्लेटफॉर्मों पर सेवा बाधित करने जैसे हमले इसी मानसिकता के शुरुआती दिखाई देने वाले रूप हो सकते हैं। समूह के सदस्य एक दूसरे को उकसाते हैं, सफल हमलों को उपलब्धि की तरह साझा करते हैं और पीड़ितों को दूरस्थ आंकड़ों की तरह देखने लगते हैं। यह दूरी सहानुभूति को कमजोर करती है। पुस्तक इसीलिए माता पिता और शिक्षकों के लिए असुविधाजनक प्रश्न उठाती है। घर में कमरे के भीतर स्क्रीन पर शांत दिखने वाला किशोर वास्तविक दुनिया से कटा हुआ नहीं है, वह प्रभावशाली और कभी कभी विनाशकारी नेटवर्क का हिस्सा भी हो सकता है। समाधान के लिए केवल उपकरणों की निगरानी नहीं, बल्कि डिजिटल व्यवहार, प्रतिष्ठा की भूख और परिणामों की समझ पर बातचीत जरूरी है। चौथा, हैकिंग समुदायों में कौशल, पहचान और नैतिक दूरी का निर्माण। पुस्तक के अनुसार खतरनाक हैकर अचानक तैयार नहीं होते, वे अक्सर गुप्त ऑनलाइन समुदायों में प्रवेश करते हैं जहां तकनीकी जानकारी, संपर्क और पहचान एक साथ बनते हैं। इन स्थानों में सीखना स्वयं में समस्या नहीं है, क्योंकि साइबर सुरक्षा में वही कौशल रक्षा, परीक्षण और वैध शोध के लिए भी उपयोगी होते हैं। निर्णायक बात यह है कि समुदाय किस व्यवहार को सम्मान देता है और नए सदस्य किस तरह के परिणामों से परिचित होते हैं। यदि प्रतिष्ठा किसी सिस्टम को सुरक्षित बनाने के बजाय उसे बाधित करने, जानकारी चुराने या किसी लक्ष्य को अपमानित करने से मिले, तो तकनीकी दक्षता नैतिक जिम्मेदारी से अलग हो सकती है। टाइडी के साक्षात्कार आधारित दृष्टिकोण की उपयोगिता यहां दिखती है। वह केवल हमले की तकनीक नहीं, उस सामाजिक प्रक्रिया पर ध्यान दिलाते हैं जिसमें उपनाम, गुट, प्रतिस्पर्धा और दर्शक किसी अपराध को खेल या प्रदर्शन बना देते हैं। फिर भी पुस्तक एक समान नियति का दावा नहीं करती। कुछ युवा अपराध से दूर होकर साइबर सुरक्षा के वैध कामों में जा सकते हैं। यह अंतर प्रारंभिक हस्तक्षेप की संभावना बताता है। शिक्षा का लक्ष्य भय पैदा करना भर नहीं, बल्कि कौशल के वैध रास्ते, पीड़ितों की वास्तविकता और ऑनलाइन समूहों के दबाव को समझने की क्षमता देना होना चाहिए। अंत में कानून प्रवर्तन, अभिभावकता और रोकथाम की सीमाएं, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस केओस किसी आसान नीति समाधान का दावा नहीं करती। किशोर हैकिंग गिरोह अलग अलग देशों में काम कर सकते हैं, डिजिटल पहचान छिपा सकते हैं और पीड़ितों से बहुत दूर रह सकते हैं। इसलिए स्थानीय पुलिस की क्षमता मात्र से समस्या नहीं सुलझती। पुस्तक बेहतर सीमा पार सहयोग और ऐसे दंड की जरूरत की ओर संकेत करती है जो पीड़ितों को हुई वास्तविक क्षति को गंभीरता से ले। वास्तामो जैसे मामले बताते हैं कि डेटा उल्लंघन का प्रभाव वर्षों तक रह सकता है। साथ ही टाइडी की पड़ताल अभिभावकों को दोष देने की सरल प्रवृत्ति पर भी सावधानी रखती है। हर परिवार के पास तकनीकी ज्ञान, समय, संसाधन या किशोर की ऑनलाइन गतिविधियों को समझने की समान क्षमता नहीं होती, अतः जिम्मेदारी को केवल घर तक सीमित करना अनुचित और अप्रभावी होगा। स्कूलों, तकनीकी कंपनियों, पुलिस, सामाजिक सेवाओं और साइबर सुरक्षा क्षेत्र की भूमिका भी है। जहां संभव हो, अपराध में फंसने से पहले प्रतिभाशाली युवाओं को नैतिक हैकिंग और वैध प्रशिक्षण की ओर मोड़ना उपयोगी हो सकता है। लेकिन यह पुनर्वास तभी विश्वसनीय होगा जब वह पीड़ितों के नुकसान को छोटा ना करे। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश संतुलित है। रोकथाम के लिए मानव संबंध, शिक्षा, जवाबदेही और संस्थागत सुरक्षा को साथ काम करना होगा। निष्कर्ष में, यह पुस्तक साइबर सुरक्षा पेशेवरों, कानून प्रवर्तन कर्मियों, शिक्षकों, अभिभावकों और डिजिटल जोखिमों को मानवीय दृष्टि से समझना चाहने वाले सामान्य पाठकों के लिए उपयोगी है। तकनीकी पाठक इसमें हमलावरों की प्रेरणा, समूह गतिशीलता और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के महत्व को बेहतर संदर्भ में देख सकते हैं। अभिभावक और शिक्षक यह समझ सकते हैं कि स्क्रीन के सामने बिताया समय अपने आप में अपराध का संकेत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन साथियों, पहचान और व्यवहार में बदलाव पर संवाद आवश्यक है। नीति निर्माताओं के लिए पुस्तक सीमा पर जांच, पीड़ित सहायता और शुरुआती रोकथाम के बीच संतुलन का प्रश्न उठाती है। समान विषय की कई पुस्तकों में किसी एक बड़े हमले की तकनीकी व्याख्या या केवल अपराधी की सनसनीखेज छवि प्रधान देती है। टाइडी की अलग पहचान पत्रकार के रूप में उनकी पहुंच और अपराधी, जांचकर्ता तथा पीड़ित के स्तरों को एक साथ रखने में है। जूलियस की विमाकी और वास्तामो का प्रसंग पुस्तक को ठोस आधार देता है, जबकि लल्जसेक और लिजर्ड स्क्वाड जैसे समूह व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ बनाते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि यह साइबर हमले को सर्वर या स्क्रीन की समस्या भर नहीं मानती। यह दिखाती है कि तकनीकी कमजोरियां, ऑनलाइन उपसंस्कृतियां और मानवीय असुरक्षाएं मिलकर वास्तविक जीवन में गहरा नुकसान कैसे पैदा करती हैं। इसलिए यह पुस्तक डर उत्पन्न करने से अधिक जिम्मेदार समझ विकसित करने वाली चेतावनी है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जो डाइडी, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।